नमस्कार भारत, तारीख 16 जनवरी, दिन सोमवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। पिता मुलायम, पुत्र अखिलेश के बीच किसे मिलेगी साइकिल? चुनाव आयोग सुना सकता है आज फैसला।
17 तक ही तय हो जाएगा, घोषणा पत्र भी, उम्मीदवारों की घोषणा भी, क्या चुनाव चिन्ह होगा, क्या नाम होगा, क्योंकि इस बीच में निर्वाचन आयोग भी अपना फैसला सुना देंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। पटना में गंगा नदी में डूबे लोगों को खोजा गोताखोर राजेंद्र साहनी ने।
हमारा टीम तो खुद हम ही निकाले हैं, 24 को रात में 20, दिन में 4। कितना साल, जूता, चप्पल, आओ बनियान है, सूटर है, जैकेट है, सब निकाले हैं। बंसी जब पानी में गिर जाएगा ना, तो किसी तरह से डेड बॉडी के एकदम निकल जाना है।
वसतुल्ला खां की डायरी आपको सुनाएंगे पाकिस्तान से। कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के धड़ों के बीच तकरार पर चुनाव आयोग आज फैसला सुना सकता है। चुनाव आयोग ने साइकिल चुनाव चिन्ह पर फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में सपा के दोनों धड़ों के नेता विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने में काफी कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा ने भी अभी तक अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। राज्य में मतदान 11 फरवरी से शुरू होगा और 7 चरणों तक चलेंगे। पश्चिम बंगाल के गंगासागर में दम घुटने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा दक्षिणी 24 परगना जिले में स्थित काचुबेरिया में एक घाट के पास कल शाम 6 बजे हुआ। यहाँ पवित्र स्नान करने की जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ काचुबेरिया घाट पर नाव से कोलकाता जाने का इंतजार कर रही थी। मरने वाली सभी महिलाएं हैं और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रतो मुखर्जी ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर पिछले 2 दिनों में 16 लाख श्रद्धालुओं ने गंगासागर में डुबकी लगाई है। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के अखबार टाइम्स और जर्मन अखबार बिल्ड को दिए साक्षात्कार में अपने विदेश नीति की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की है। ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका के व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के साथ, खासतौर पर चीन के साथ, निष्पक्ष व्यापार सौदा करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन का जोर मुक्त व्यापार की बजाय स्मार्ट व्यापार पर होना चाहिए। ट्रंप ने रूस के साथ भी समझौते की संभावना जताई है अगर प्रतिबंधों को सरल करने के बदले में रूस परमाणु हथियारों में कटौती करे। ट्रंप ने इराक में अमरीकी आक्रमण की भी निंदा की है। सबसे पहली बात कि इराक पर हमला किया ही नहीं जाना चाहिए था। ये सबसे खराब फैसलों में से एक था और संभवतः हमारे देश के इतिहास में किया गया सबसे खराब निर्णय था। यह मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा है। ये अब तक की सबसे बड़ी अव्यवस्था है। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ दिन पहले ही अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन ब्रेनन ने कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस की कार्रवाई इरादों और क्षमताओं की पूरी तरह समझ नहीं है। ब्रेनन ने कहा है कि जब तक मॉस्को अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता, ट्रंप को मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों को हटाने को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। CIA प्रमुख जॉन ब्रेनन का कार्यकाल जल्दी ही खत्म होने वाला है। जॉन ब्रेनन का यह बयान उन अमरीकी खुफिया रिपोर्ट के एक सप्ताह बाद आया है जिसमें कहा गया था कि रूस ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। जॉन ब्रेनन ने फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्विटर पर संदेश देने के माध्यम से विदेशों के साथ संबंधों की घोषणा नहीं कर सकते। ब्रेनन ने कहा, मुझे लगता है कि ट्रंप को यह समझना पड़ेगा कि अब ये मामला केवल उन तक सीमित नहीं है, ये अमेरिका के बारे में और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन पर यह जिम्मेदारी है कि जब वे बात करते हैं या ट्विटर पर कोई संदेश देते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू हित प्रभावित ना हो और अमेरिका का हित सबसे ऊपर रहे। बयानबाजी राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती। CIA प्रमुख जॉन ब्रेनन के शब्द। तुर्की में संसद के नए संविधान को प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और आज मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम भारत से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। चुनाव आयोग मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के धड़ों के बीच तकरार पर आज फैसला सुना सकता है। आयोग इस बात का फैसला करेगा कि पार्टी का चुनाव निशान साइकिल आखिरकार किसे मिलता है। इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची भी रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। सुनिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की शुरुआत कल यानी 17 जनवरी से होनी है, लेकिन अभी तक सत्ताधारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की अगुवाई वाला धड़ा चुनाव आयोग के फैसले के इंतजार में है। चुनाव आयोग के सामने अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के धड़े अपनी दलीलें रख चुके हैं। इस बीच अखिलेश राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे दलों के साथ गठबंधन की कोशिश में भी जुटे हैं, लेकिन गठबंधन और उम्मीदवारों के ऐलान के पहले हर किसी को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अखिलेश धड़े वाली समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
17 तक ही तय हो जाएगा, घोषणा पत्र भी, उम्मीदवारों की घोषणा भी, क्या चुनाव चिन्ह होगा, क्या नाम होगा, क्योंकि इस बीच में निर्वाचन आयोग भी अपना फैसला सुना देंगे। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक संभावना हो सकती है।
वहीं पहले अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही कांग्रेस भी संकेत दे रही है कि वो इस गठबंधन के पक्ष में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं,
जो प्रदेश चुनाव समिति है उन्होंने लगभग 403 के 403 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए, पर ये सच्चाई है कि ना केवल उत्तर प्रदेश परंतु पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि ऐसी ताकतें जो समाज में घृणा पैदा करती हैं, जाति व धर्म के आधार पर बंटवारा करती हैं, उनके खिलाफ एक मोर्चे का गठन किया जाए, जैसा बिहार में हुआ था, इस बारे मंत्रणा हो रही है।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। कयास ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट के इंतजार में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत शर्मा ऐसे अनुमानों को गलत बता रहे हैं।
हम कोई पिता पुत्र की पार्टी तो है नहीं, एक व्यक्ति हमारे यहाँ पार्टी नहीं चलाता, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारा सब होमवर्क कम्प्लीट हो गया है। हमारी एक चुनाव समिति की बैठक अभी चल रही है और बहुत जल्दी जो जिन नामों पर चर्चा हो रही है, पहले दूसरे जो चरण के चुनाव हैं उनकी बहुत जल्दी सूची हम लोग जारी करेंगे।
पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख करीब होने की वजह से अब इन दलों के पास ज्यादा समय इंतजार करने का वक्त नहीं है। इन दलों के उम्मीदवार भी चाहते हैं कि लिस्ट जल्दी जारी हो जिससे वो चुनाव की तैयारी में जुट सकें।
तो निगाहें अब चुनाव आयोग पर हैं जो कि ये तय करेगा कि साइकिल चुनाव निशान किस गुट को मिलता है, मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश से रुख पंजाब का करते हैं। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू किस दल का हाथ थामेंगे, पिछले कई महीनों से इस पर कयास लगाए जा रहे थे। कभी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले सिद्धू आम आदमी पार्टी का हाथ थाम सकते हैं, लेकिन उन्होंने आखिरकार कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिद्धू के आने से पार्टी को फायदा होगा। एक रिपोर्ट के साथ है मानसी दास।
अपने बेबाक बयानों और ठहाकों के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का हाथ बेहद खामोशी से थामा। बीते कई दिनों से उनकी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी। सिद्धू के कांग्रेस के साथ जुड़ने की जानकारी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर उनके साथ ली गई तस्वीर साझा करते हुए दी। थोड़ी देर बाद सिद्धू ने भी ट्वीट किया। सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं और ट्वीट की भाषा भी क्रिकेट वाले अंदाज में ही थी। उन्होंने लिखा, नई पारी की शुरुआत फ्रंट फुट पर, पंजाब, पंजाबियत और हर पंजाबी को जीत हासिल करनी चाहिए। सिद्धू की नई पारी पर उनके पुराने दल भारतीय जनता पार्टी ने खास उत्साह नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने सिद्धू के फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को डूबता जहाज बताया।
कांग्रेस एक डूबता जहाज है और लोग, क्योंकि करप्शन भी है, कुशासन भी है, अहंकार भी है, ये अपना निजी फैसला होता है कौन किस पार्टी के साथ जाए, लेकिन जहां कांग्रेस के डूबते जहाज से लोग कूद कूद कर उससे बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वहीं अगर कोई कांग्रेस में जा रहा है तो हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी।
कांग्रेस में जाने के पहले सिद्धू ने संकेत दिए थे कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच बात बनी नहीं। सिद्धू के कांग्रेस के साथ जुड़ने की खबर आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया जिनमें सिद्धू के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि कांग्रेस इन प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं दिखी। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के आने से कांग्रेस पार्टी को और बल मिलेगा। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब के बच्चे बच्चे में पहचान भी है, ये न केवल एक सशक्त नेता के तौर पर परंतु एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो सटीकता और सच्चाई पे कभी समझौता नहीं करता। उन्होंने देख लिया कि अच्छे दिनों का वायदा करने वालों ने पंजाब को नशों और नशों के साथ साथ अपराध की गर्त में धकेल दिया है।
कांग्रेस का दावा है कि सिद्धू की नई पारी पंजाब और पार्टी दोनों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि खामोशी से नई पिच पर दाखिल होने वाले सिद्धू क्या अपना पुराना आक्रामक अंदाज बरकरार रख पाएंगे।
तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का हाथ थामा। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को गंगा नदी में हुए हादसे के बाद एक नाम सबकी जुबां पर चढ़ा हुआ है। वो नाम है गोताखोर राजेंद्र साहनी का, जिनकी टीम ने कम से कम 20 लाशों को गंगा से निकाला। राजेंद्र साहनी ने देसी तकनीक से लाशों को निकाला। उधर एनडीआरएफ का कहना है कि रविवार सुबह उन्होंने 4 लाशें निकाली हैं। महज 243 रुपए रोजाना की मजदूरी पर काम करने वाले राजेंद्र साहनी से आपको मिलवा रही हैं सीटू तिवारी।
हादसा बहुत बड़ा ना है।
राजेंद्र साहनी बीती शनिवार शाम से ही बहुत व्यस्त है। उनका मोबाइल लगातार घनघना रहा है। वो गोताखोर हैं। शनिवार शाम गंगा में हुए नाव हादसे में राजेंद्र ने अपनी बंसी के सहारे 20 लाश निकाली। पटना के बालूघाट के राजेंद्र साहनी बताते हैं कि वो घर में आग ताप रहे थे जब उनको जिला प्रशासन की तरफ से बुलाहट आई। वो घटना स्थल पर गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ लाशें निकालनी शुरू की। वो बताते हैं,
हमारा टीम तो खुद हम ही निकाले 24 को, रात में 20, दिन में 4। साल जूता चप्पल और बनियान है, सूटर है, जैकेट है, सब निकाले हैं। बंसी जब पानी में गिर जाएगा ना तो किसी तरह से डेड बॉडी के एकदम निकल जाना है, नहीं निकलने के सवाल ही नहीं है।
गौरतलब है कि एनडीआरएफ की टीम रात 8 बजे घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन लाशें राजेंद्र साहनी और उनके साथी ही निकालते रहे। एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि रविवार सुबह जो 4 लाशें निकली वो एनडीआरएफ ने निकाली। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आपदा संबंधी ट्रेनिंग और सरकारी खर्च के बावजूद एनडीआरएफ से ज्यादा प्रभावी तो स्थानीय गोताखोर ही साबित हुए। मैंने जब ये सवाल विजय सिन्हा से किया तो उन्होंने कहा,
को 7:15 बजे इन्फॉर्मेशन मिली, 8 बजे आए। 8 के पहले जो लोग निकाल चुके थे। उसके बाद हमारी टीम सर्च कर रही थी, आज सुबह से 4 हम ही ने डेड बॉडी निकाले हैं, गोताखोर तो थे नहीं। तो ये चीज है कि अब ऊपर में उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं।
इस बीच राजेंद्र साहनी और उनके साथियों का दावा है कि रविवार सुबह जो 4 लाशें भी निकली वो उन्होंने ही निकाली। इधर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी सामने है। प्रशासन का दावा है कि गोताखोरों की नियुक्ति की गई थी, जबकि गोताखोरों का कहना है कि हादसा होने के बाद उन्हें बुलाया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम शशांक शेखर सिन्हा इस मसले पर कुछ भी साफ बोलने से बचते रहे।
नहीं नहीं, हमारे गोताखोर ने की, जिला प्रशासन का गोताखोर ने की है। राजेंद्र साहनी जिला का मुख्य गोताखोर है जिसने बॉडी रिकवर किया है। जो भी बॉडी रिकवर हुई है ऑफ कोर्स उनका भी सहयोग है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ बाद में सारे लोग कॉल हुए।
राजेंद्र साहनी को रोजाना की मजदूरी 243 रुपए मिलती है। वो बीते 35 साल से गोताखोरी कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसी गंगा से वो 6,000 लाशें निकाल चुके हैं। वो कहते हैं कि हम जल के राजा हैं, हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम है, बाकी सरकारी तामझाम तो खाना पूर्ति है।
वो लोग पानी का अनुभव ही नहीं ना है, हम लोग जल के राजा है, मछुआरा है, तो हमसे ज्यादा कौन निकाल सकता है।
इस घटना के बाद जहाँ पटना के लोगों की जुबान पर राजेंद्र साहनी हीरो के तौर पर उभरे हैं, वहीं प्रशासनिक चुप्पी पर लोगों का गुस्सा परवान पर है। इस हादसे ने कम से कम आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ एनडीआरएफ को खुद का आत्ममंथन करने का मौका तो जरूर दे दिया है। उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे भी। सीटू तिवारी, बीबीसी, सबलपुर दियारा, पटना।
तो ये थे राजेंद्र साहनी जिन्होंने गंगा नदी में हुए हादसे में मृतकों को निकाला। हाल ही में भारी हिमपात के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 1300 ट्रकों को रोक दिया गया था। शून्य से नीचे पहुंचे तापमान में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे ट्रक ड्राइवरों की दशा दुर्दशा पर श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश से आए हुए ट्रक ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ बीते तीन दिनों से कश्मीर घाटी के काजीगुंड में 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही बर्फबारी के कारण एक ही जगह अपने ट्रक में बैठे रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें शिकायत है कि बीते तीन दिनों से जो वो पानी यहाँ पी रहे हैं उस पानी के पीने से उनके शरीर को बीमारी ने लपेट में लिया है।
समस्या ये है जी, पानी नहीं है, एक तो टंकी नहीं है, अच्छे नलके का पानी आ रहा है साहब, ये देखो उसका, इस नलके का पानी में मशीन आ रही है, मजबूरी में इसे ये पीना ही पड़ रहा है, इससे खाना ही बनाना पड़ रहा है, मैं सब कुछ करना पड़ रहा है।
न सिर्फ पानी की समस्या से इन सैकड़ों और हजारों ट्रक ड्राइवरों को इस दौरान जूझना पड़ता है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्दी और गाड़ी में नाकाफी बिस्तर भी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती है। मोहम्मद यूसुफ के कंडक्टर मोहम्मद बोरा,
सर एक डीजल है, बस एक कम्बल है, बस और क्या है, से गुजारा, रात को ठंड लगती है, अपना गुजारा कर रहे हैं तीन चार दिन से।
रात की सख्त तरीन सर्दी इन ट्रकों की टैंकों में मौजूद डीजल को इस कदर जमा देती है कि आधी आधी रात को नींद से खड़े होकर गाड़ी को सेल्फ मारना पड़ता है।
रात को तीन तीन बार उठकर स्टार्ट करते हैं, तो जब गाड़ी सुबह फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं होती, पानी भी जम जाता है।
भाई हालात बहुत खराब हो रही है, खाना पीना चाय वगैरह।
7 जनवरी 2016 को भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर करीब 1300 ट्रकें रोक दी गई थीं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले इन ड्राइवरों की ये मुश्किलें बीते 5 दशकों से भी ज्यादा समय से खत्म नहीं हो रही हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का हाल सुना रहे थे माजिद। और अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। अमर शर्मा, अखबार आप देख चुके हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अखबारों की?
जी देखिए, हिंदू अखबार ने अपनी जो पहली खबर बनाया है, इसकी पहली खबर आज की, केंद्र सरकार ने केरल राज्य में 4 भाजपा नेताओं को VIP सुरक्षा कवर प्रदान किया है। भाजपा राज्य इकाई ने आरोप लगाया था कि माकपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनके कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2 महासचिवों को वाई श्रेणी की सुरक्षा 1 पखवाड़े पहले दी। इससे पहले दिसंबर 2016 में पंजाब में भी RSS के 4 पदाधिकारियों को 1 श्रेणी का केंद्रीय सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था, क्योंकि पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव होने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर है कि दिल्ली पुलिस ने 38 साल के एक व्यक्ति को पूर्वी दिल्ली में गिरफ्तार किया है, जब ये 2 नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का दावा है कि यूपी के रामपुर का रहने वाला ये शख्स सुनील रस्तोगी, जिसका नाम बता रही है पुलिस ने, उसने कबूल किया है कि उसने पिछले 12 सालों के दौरान 500 बच्चों का शारीरिक शोषण किया है। इस बीच 2006 में उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जुर्म के लिए वो 6 महीने की जेल की सजा भी काट चुका है। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड में स्कूल से घर लौटने वाली बच्चियों को अपना शिकार बनाया करता था।
ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है।
जी, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की पहली खबर है कि भारत की परमाणु आपूर्ति समूह NSG में सदस्यता में चीन रोड़ा बना है। अमेरिका के निवर्तमान ओबामा प्रशासन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य बनने की भारत की मुहिम में रोड़ा अटकाने के लिए चीन पर निशाना साधा है। दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने इस विश्वास को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहे हैं कि भारत NSG के लिए पात्रता रखता है और अमेरिका इस समूह में भारत के प्रवेश का समर्थन करता है, लेकिन चीन रोड़ा बना हुआ है। स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सेना प्रमुख की चेतावनी को अपनी पहली और दूसरी खबर बनाया है।
इंडियन एक्सप्रेस की लीड यही है।
जी, तमाम हिंदी अखबारों ने अपने पहले और अंग्रेजी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उन सैनिकों को चेतावनी दी है कि जो अपनी तकलीफ सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं। रावत ने कल 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर कहा कि जो सैनिक असंतुष्ट हैं वे अपनी शिकायत सीधे उनके पास लेकर आ सकते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर शिकायत करने में उनके जवान पर असर पड़ता है जो देश की सुरक्षा में सरहद पर डटे हुए हैं।
जनसत्ता ने भी यही लीड लगाई है कि सोशल मीडिया पर अगर दुखड़ा रोया तो मिलेगी सजा। बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा आपका।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। और जैसा कि आप जानते हैं कि खादी के कैलेंडर में इस बार नरेंद्र मोदी ने गांधी की जगह ले ली। तो इसी पर सुनिए पाकिस्तान से वसतुल्ला खां की डायरी।
हबीब जालेब पाकिस्तान के सबसे जाने माने अवामी इनकलाबी शायर थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अयूब खान से लेके भुट्टो और फिर ज़ियाउल हक तक फौजी और सिविलियन तानाशाहों से लड़ते गुजारी, जेल गए और मारें खाईं। यही हबीब जालेब मार्च 1993 में शरीफ परिवार के शहर लाहौर में मरे तो उनके बैंक अकाउंट में 150 रुपये भी नहीं थे, जबकि नवाज शरीफ उस वक्त प्रधानमंत्री थे। आज इन्हीं हबीब जालेब के सबसे बड़े भक्त ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे, हमारे प्रधानमंत्री के छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री शाहबाज शरीफ हैं। उनकी हर तकरीर हबीब जालेब के इस शेर पे ख़त्म होती है, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान का हर राष्ट्रपति भले सिविलियन हो के फौजी, हर प्रधानमंत्री और मंत्री भले राइट का हो के लेफ्ट का, जब भी शपथ लेता है तो उस वक्त जिना कैप और जिना की तरह शेरवानी ज़रूर पहनता है। फैज़ अहमद फैज़ ने पूरी ज़िंदगी सोशलिस्ट विचारों के साथ गुजारी, मगर आज हाफिज़ सईद और जमात इस्लामी वाले भी अपने जलसों में फैज़ साहब के शेर पढ़ने से नहीं चूकते। कत्ल गाहों से चुन कर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफ़िले। ऐसे में जब सीमा पार से ऐसी खबरें आती हैं तो हंसने को जी चाहता है कि खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के कर्मचारी इस बात पे खुश नहीं कि उनके कैलेंडर और वेबसाइट पे गांधी जी की जगह मोदी जी क्यों चरखा कात रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का ताल्लुक़ आरएसएस से है और आरएसएस का गांधी और उसकी फ़िलासफ़ी से वही ताल्लुक़ है जो सऊदी अरब का मार्क्सिज़म से। मगर मुझ जैसों का मानना है कि अगर शहबाज शरीफ हबीब जालेब के आशिक हो सकते हैं, हाफिज़ सईद को फैज़ साहब पसंद आ सकते हैं, बिल क्लिंटन नेल्सन मंडेला को गुरु मान सकते हैं, तो मोदी साहब के गांधी स्टाइल में चप्पा चप्पा चरखा चलाने में क्या आपत्ति है। अब आप मुझे ये ना बताइएगा कि अगर वाकई मोदी जी को गांधी के विचारों से इतना प्यार है तो उन्होंने ओबामा का इस्तकबाल करते हुए 1,000 रुपये की खादी के बजाय 10 लाख रुपये का सूट क्यों पहना और उस पे गोल्डन कढ़ाई में अपना नाम 100 बार क्यों लिखवाया, फिर यही सूट 43 करोड़ रुपये में नीलाम होके गिनिस बुक में कैसे आ गया। अगर आ ही गया था तो ये 43 करोड़ रुपये गांधीगिरी फैलाने में क्यों इस्तेमाल नहीं हुए। गांधी जी ने तो अपनी ज़िंदगी में 43 करोड़ छोड़ 43 लाख भी कभी इकट्ठे ना देखे होंगे। ऐसे लोगों से मैं बहुत तंग हूं जो बाद बाद में कीड़े निकालते हैं, मगर हम मोदी जी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो गांधी जी के साथ ली गई सेल्फी भी अपने ट्विटर पे डाल के सब जलने वालों के मुंह पे ताला लगा देंगे। यस यू कैन डू इट ब्रो, सब बिकता है, फैज हो के जालेब के मंडेला के गांधी, जो चाहे खरीद ले और फिर आगे भेज दे।
वसतुल्ला खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। कल विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पुणे में एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली और केदार जाधव ने शानदार सैकड़ा जड़ा। इंग्लैंड के 351 रन के लक्ष्य को भारत ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ हफ्ते भर में खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ, सुनिए आदेश कुमार गुप्त से खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने कल पुणे में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 3 विकेट से मात दी, वो भी तब जब भारत के सामने जीत के लिए 351 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था। और एक समय भारत के 4 धुरंधर बल्लेबाज केएल राहुल, शिखर धवन, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी 63 रनों तक आउट होकर पेवेलियन लौट चुके थे, लेकिन उसके बाद मैदान में कप्तान विराट कोहली और केदार जाधव का बल्ला बोला। विराट कोहली ने 122 और केदार जाधव ने 120 रनों की शतकीय पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी की। विराट कोहली का ये एक दिवसीय क्रिकेट में 27वां शतक था। बचा हुआ काम हार्दिक पांड्या ने नाबाद 40 रन बनाकर पूरा किया। भारत ने 11 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेसन राय के 73, जो रूट के 78 और बेन स्टोक्स के 62 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 350 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरा मैच 19 तारीख को कटक में खेला जाएगा। भारत की जीत में विराट कोहली तो चमके ही, लेकिन केदार जाधव और हार्दिक पांड्या के खेल को लेकर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया कहते हैं,
तारीफ केदार जाधव की इसलिए करनी होगी कि विराट कोहली तो ही कमाल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए था दूसरे छोर पे, और दूसरे छोर पे जो मिला वो इस तरीके का बंदा मिला कि जिसने विराट से भी ज्यादा तेज पारी खेली शुरू में और समय दिया विराट को, क्योंकि विराट जब तक क्रीज पे रहेंगे कोई भी ऑपोजिशन हो, कुछ भी टोटल हो, उसको आप पार पा सकते हैं। और सबसे बड़ी तारीफ मैं इस चीज की करना चाहूंगा कि कई बार होता क्या है कि इतने बड़े स्कोर पे आप पास पहुंच जाते हैं और उसको पार जाने का मलाल रहता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की पारी, छोटी सी पारी जडेजा की और बहुत ही समझदार पारी हार्दिक पांड्या की, अगर ये हार्दिक पांड्या इसी तरीके से कुछ समय और खेल गए ना, तो फिर ये वो ऑलराउंडर जिसकी हमें तलाश है वो मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे इनके अंदर जो बदलाव टेम्परमेंटली पिछले 2 महीने में दिखा है वो गजब का है।
उधर पाकिस्तान ने कल मेलबोर्न में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पटखनी दी। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 221 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के 72 और शोएब मलिक के नाबाद 42 रन की मदद से 47.4 ओवर में केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 45 रन देकर 2 और जेम्स फॉकनर ने भी 35 रन देकर 2 विकेट किए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.2 ओवर में 220 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने 60 और मैथ्यू वेड ने 35 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद आबिर ने 47 रन देकर 3 और जुनेद खान ने 40 रन देकर 2 और इमाद वसीम ने 37 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। और अब बात टेनिस की। आज से साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने जा रहा है, जहां आज पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे यूक्रेन के इलिया मर्चिनको का सामना करेंगे। उनके अलावा 17वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर क्वालिफायर ऑस्ट्रिया के जुर्गेन मिल्जर का सामना करेंगे। महिला एकल वर्ग में आज 4वीं वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप, 13वीं वरीयता हासिल अमरीका की सेरेना विलियम्स और 7वीं वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल वर्ग में स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ पिछले साल खिताब अपने नाम करने वाली भारत की सानिया मिर्जा चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा के साथ खेल रही हैं, जिन्हें 4वीं वरीयता दी गई है। जबकि पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना उरुग्वे के पाब्लो क्यूवास के साथ मिलकर अपना दावा पेश करेंगे। और अब बात बैडमिंटन की। आखिरकार 2 सप्ताह तक दुनिया भर के देसी विदेशी सितारों से सजी प्रीमियर बैडमिंटन लीग फाइनल में चेन्नई स्मैशर्स की मुंबई रॉकेट्स पर 4-3 के खिताबी जीत के साथ ही समाप्त हो गई। चेन्नई स्मैशर्स की जीत में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु और थाईलैंड के तानोंग साक सीन सोम बुनसुक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीन सोम बुनसुक ने निर्णायक मुकाबले में मुंबई के अजय जयराम को 9-11, 11-7, 11-3 से मात दी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
हफ्ते भर खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ, आदेश कुमार गुप्त सुना रहे थे। और अब कार्यक्रम में से पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की धड़ों के बीच तकरार पर चुनाव आयोग आज फैसला सुना सकता है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में दम घुटने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दक्षिणी 24 परगना जिले में स्थित काचुबेरिया में एक घाट के पास कल शाम 6 बजे हुआ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के अखबार टाइम्स और जर्मन अखबार बिल्ड को दिए साक्षात्कार में अपने विदेश नीति की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की है। ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन का जोर मुक्त व्यापार की बजाय स्मार्ट व्यापार पर होना चाहिए। ट्रंप ने रूस के साथ भी समझौते की संभावना जताई है अगर प्रतिबंधों को सरल करने के बदले में रूस परमाणु हथियारों में कटौती करे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन ब्रेनन ने कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को रूस की कार्रवाई इरादों और क्षमताओं की पूरी तरह समझ नहीं है। ब्रेनन ने कहा है कि जब तक मॉस्को को अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता, ट्रंप को मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों को हटाने को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। शाम 7:30 बजे दूसरी सभा दिन भर लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को विदा दें और bbchindi.com के पन्ने पर आते रहें। नमस्कार।